बिहार में कुछ भक्त लोग कुंभ का मेला नहाने को जा रहे थे, कुंभ का स्नान करने को जा रहे थे। छोटे से गांव था, बनिए लोग थे, बनिए लोग दुकान पर बात कर रहे थे कि परसों चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऊंटों पे चलेंगे, घोड़ों पे चलेंगे। तो चमार जो था उसने भी बात सुन ली, उसने कहा मैं भी चलूंगा यात्रा को। बनियों के साथ चमार हो लिया, स्नान किया, पंडा से संकल्प कराया। पंडा ने कहा कुछ न कुछ छोड़ के जाओ, तो किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा। चमार ने कहा कि अब मैं बोझा न ढोऊंगा, अब मैं अपने सिर पर कोई बोझा न रखूंगा, आज से मैं ये सोगन ले जाता हूं, अब हमाली नहीं करूंगा, अब वजन नहीं उठाऊंगा, बोझा नहीं ढोऊंगा, मजूरी न करूंगा। लौटा, अपने राज्य में पहुंचा। एक दिन बेगर कराने वाले आ गए सिपाही, उसको बोला ये उठाओ। उसने कहा मैंने तो बोझा उठाना छोड़ दिया है, मैं कुंभ के मेले में कसम खाकर आया, चलो दुकानदारों से पूछवाए। गए दुकानदार के पास, सिपाही को लेकर के, देखो मैं बोझा ढोना छोड़ के आया। बोले बोझा ढोना तो छोड़ के आया, लेकिन चमार का धंधा तो छोड़ा नहीं। चमार का धंधा नहीं छोड़ा तो तब तक चमारी, जब तक तू अपने को चमार मानेगा तब तक तेरे को फुटपाथ पे रहेगा, और चमार मानेगा तब तक बेघर करना ही पड़ेगा। ऐसे ये जीव कुंभ का मेला नाए, मंदिर में जाए, कसम खाए, ये लूंगा, ये छोड़ूंगा, ये पकड़ूंगा, ये माला करूंगा, लेकिन अपने को देह मानना, अपने को चर्म वाला मानना जब तक रहेगा तब तक इसको बेघर कराई जाएगी। जन्मो मरो, माता के गोद में आओ, रो हंसो, मार खाओ, कट्ठा करो, फिर एक झापट पड़ी, छोड़ दिया, सब बेगारी। सारा जीवन मजूरी क्या, एक मौत ने बेगारी कर दिया। सारा जीवन हम बेगारी करते हैं, मौत के बाद भी फिर नए जन्म में बेगारी करते हैं। जब तक अपने को चमार मानते रहोगे और शरीर के फुटपाथों में रहते रहोगे तब तक बेगारी कराने वाले तुमको पकड़ के कराएंगे ही। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इस बेगारी से बचना हो तो यदि देह पृथकत्व, यदि देह से अपना पार्थक्य आ जाए और आत्मा में अहम प्रत्यय आ जाए तो मुक्त होना, सफल होना इतना आसान है कि महाराज जितना कंगाल होना आसान है उतना ही शहंशाह होना आसान है। रात को स्वप्न आए, सुबह जागो, सपने को देखो कि जैसे स्वप्न आया था सच लग रहा था, बीत गया कलम, ऐसे ही जगत स्वप्न है। कल की बात आज स्वप्न है, बचपन की बात अभी स्वप्न है, युवावस्था की बात स्वप्न है, शादी की रात स्वप्न हो गया, जनेऊ के दिन स्वप्न हो गया, बीमारी के दिन स्वप्न हो गया, तंदुरुस्ती के दिन स्वप्न हो गया, ये पूरा जीवन स्वप्न हो जाता है। मेरे गुरुजी जब अंतिम श्वास ले रहे थे शरीर से, तो शरीर में ऐसा कुछ योग्यता नहीं थी शरीर की कि वो कुछ बोलने के काम आ जाए, फिर भी टूटे फूटे शब्दों में कहा कि देखो जिसनी बन सब सुपन थी, सपनों डिसी छो, 93 साल का सपना देख लिया। तो ऐसे ही बारीकी से कभी कभी बैठो कि आपको थोड़ा सूक्ष्म विचार करोगे तो पता चलेगा कि सब सपना है। और सपने के जगत में हम कितना बोझा लेकर घूमते हैं, कितना जटिलता लेकर घूमते कि ये करना है, आऊ तो करवूज पड़े, आऊ तो देखा और आखोज पड़े, आई तो जवूज पड़े, आज बेस्तो वर्ष एटले फलाने त्या नाक रगड़वूज पड़े, फलाने त्या आम जवू पड़े। पण भाई तू पोताना घरे तो आ एक दाड़ो, મારે ગામે જવું પડે, દુકાને જવું પડે, પેઢીએ જવું પડે, આશ્રમમાં જવું પડે, તિજોરીમાં જવું પડે, બેંક વાળાને ત્યાં જવું પડે, અરે ભાઈ ત્યાં આખો જીવન જા, છતાંય શાંતિ નહીં મળે। એકવાર તું પોતાના ઘરમાં તો આવે, અપને સ્વરૂપમાં તો આ કર દેખ, ફિર બેંક વાળે તેરે પીછે ઘૂમેંગે। ઓમ 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 ઓમ। चीन में एक प्रसिद्ध फकीर हो गया नरोलम्मा। उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्या करूं। बोले कुछ करना नहीं है। नरोलम्मा ने कहा कुछ करना नहीं है, केवल डूब जा। गुरु ऐसा कह के चुप हो गए। शिष्य समझदार रहा होगा, शिष्य गुरु के तरफ निहारता 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 अपने श्वासों को देखता 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 खो गया। कुछ ही घड़ियों में चेहरा खबर दे रहा है कि पूरा डूबा हूं। डूबना कोई पानी में डूबना नहीं है, कोई रुपयों में डूबना नहीं है, अपने आत्मा में डूबना है। जब शिष्य डूबता हुआ गुरु को दिखता है तो गुरु का हृदय भी और छलकता है। देखते देखते वो सत्य की खबरें दे रहा है। आंख उठाकर अब देखता है तो पहले जिस वक्त आंख बंद की थी तो अज्ञानी था, और अभी जो आंख खुली तो ज्ञान को उपलब्ध होकर आया। ये कठिन नहीं है, केवल जम जाए बस। सत्य तो तुम्हारा आपा है और सुख तो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन इतने पटल चढ़ गए हैं, इतनी मान्यताएं और कल्पनाएं चढ़ गई है, देख देख कर हम सुखी होते। कोई हारता है वो दूसरा हारता है तो सुखी होते हैं, अपना जीतता है तो सुखी होते हैं। वेदांत कहता है दूसरा और अपना ये मन की कल्पना है। शिवो हम जपना, ना दूसरा है ना अपना है, शिवो हम जपना है। लेकिन इसी आवेग में, इसी उत्साह में, उसी में हम आज सैकड़ों रुपए की टिकटें लेते हैं, वाह वाह करते हैं, ये वो करते हैं। इतना आदमी बिखर गया है, और बिखरने में उसे मजा आता है क्योंकि बिखरने की आदत है। जैसे दारू पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, छिकने की आदत है कि हाश अच्छी। तो तुम जब परमात्मा को प्रेम करते हो तो तुम्हारे ब्लड में भी वो प्रेम के वाइब्रेशन होते हैं, तुम्हारे निगाहों में भी होते हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द भी होते हैं। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कोई पैसों की चीज नहीं है। 10-20 रुपए लेकर तुम खुशियां लेने जाओ बाजार में नहीं, फटाकड़े मिल सकते, मिठाई मिल सकती है। फटाकड़े और मिठाई में भी तुम्हारी भीतर की खुशी, उस यार का सानिध्य होगा। तुम जितने अंश में अंतर्मुख होगे उतना ही उसमें से सुख मिलेगा, उतना ही उसमें से आनंद आएगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में, इन चीजों में आनंद नहीं, आनंद तुम्हारे स्वरूप में है। हृदय को अपने से पृथक मान लेगा, जान लेगा, तो तुरंत ही शांत हो जाएगा। अभी अभी तो सुखी हो जाएगा। देह के साथ तादात्म्य है, इसलिए सब साधना करनी पड़ती है। मैं देह नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप साक्षी आत्मा हूँ। इस प्रकार देह से पृथक हो जाएगा, जैसे सूखा नारियल नारियल में रहते हुए भी नारियल से पृथक हो जाता है, वैसे ही देह में रहते हुए भी देह भाव से आदमी पृथक होता है तो सुखी हो जाता है, शांत होता है। उस भाव को प्रकट करने के लिए पहले इष्ट में, गुरु में, भगवान में प्रीति करनी पड़ती है। और प्रीति करते करते आप खो जाते हैं तो प्रीति करने वाला भी शांत हो जाता है, मौन दशा प्राप्त हो जाती है। कबीर को काशी नरेश ने जाकर कहा कि महाराज कुछ सत्य का उपदेश दीजिए। कबीर चुप हो गए, महाराज कुछ उपदेश दीजिए गुरुजी। कमाल खड़ा था पास में, कमाल ने कहा उपदेश तो दे रहे हैं, तुम लेते कब, तुम ले नहीं रहे हो। नरेश कहता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कबीर ने कहा फिर ध्यान करो। धीरे से बोलकर कबीर शांत हो गए, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। नरेश ने कहे मैं समझ नहीं पाया, जोर से कहा कि चित्त को शांत करो। बोला और कुछ विस्तार से कहो। कबीर ने कहा अब सत्य ज्यो ज्यो हम बोलते गए त्यों त्यों सत्य खोता गया, ज्यो ज्यो हम बहिर्मुख हुए त्यों त्यों सत्य का उपदेश न रहा, अब तो केवल चर्चा रही, सत्य की अनुभूति खो गई। आदमी जितना अंतर्मुख होता है, जितना मौन होता है, उतना वो सत्य के करीब होता है। जितना शांत होता है, मौन होता है, उतना परमात्मा के करीब होता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं न तुम विप्रादि को वर्णो, ना श्रमी, ना क्षगोचरा, असंगोसी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भवा। तू श्रमी भी नहीं, आश्रमी भी नहीं। श्रम को मर्यादित करने के लिए आश्रम बनाए जाते हैं। तू श्रमी नहीं है, तू श्रम करने वाला भी नहीं है और आश्रम वाला भी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण वाला भी नहीं है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि तुम आश्रम ही नहीं है। संन्यास आश्रम, ग्रस्त आश्रम, तू आश्रमी भी नहीं है और वर्ण वाला भी नहीं है। असंगोसी निराकार हो, तू असंग है, निराकार है। निराकार सत्ता का तो चमत्कार अभी वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं। कुछ पशुओं पर प्रयोग किए थे, खरगोशी को ले गए पनडुब्बी में, समुद्र में। खरगोशी ने बच्चे दिए थे, बच्चों को दूर रखा, और शायद इस वातावरण का असर हो जाएगा तो इस वातावरण से तो दूर, लेकिन पनडुब्बी में, समुद्र में रख लिया। उसकी माँ को, और यंत्र फिट कर दिए गए। बच्चों को जब सताया जाता था तो माँ अशांत हो जाती थी, बच्चों को जब गर्दन दबा दी जाती थी तो माँ नितांत अशांत बेचैन हो जाती थी। ऐसे कई बार कई खरगोशियों को पनडुब्बी में ले जाते थे। तो बच्चों को जब पुचकारा जाता है, प्यार दिया जाता है, तो माँ भी आनंदित रहती है, और बच्चों को जब अशांत किया जाता है तो माँ भी बड़ी परेशान होती है। तो देश काल का फासला पशुओं के चित्त में भी नहीं लगता, तो परमात्मा या गुरु या साधक के चित्त में देश काल का फासला कैसे हो सकता है? तो जो परमात्मा है, अस्तित्व जो है, वो भी तुम्हारा माता पिता वही है। तो जैसे बच्चा परेशान होता है तो माता पिता बेचैन हो जाता है, तो अस्तित्व जो है, ईश्वर जो है, तुमको परेशान नहीं करना चाहता है। तुम यदि परेशान हो तो अपनी कल्पनाओं के कारण हो, तुम्हारे नासमझ के कारण, कुसंग के कारण। तुम यदि खिन्न हो, दुखी हो, तो मान्यताओं के कारण। अष्टावकर बोलते हैं, न तुम विप्रादि को वर्णो, न श्रमी, न क्षम गोचर, असंगो असी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भवा। कृत उपासक है, यदि श्रद्धालु है, अधिकारी है, तो इन वचनों से महावीर ने कहा श्रावक लोग सुनने मात्र से तर जाते हैं। श्रावक माना जिस अधिकारी है, अधिकारी श्रोता सुनने मात्र से सत्य को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र इतनी ऊंची बात कर रहे हैं कि उस करना कुछ नहीं है, केवल चित्त की विश्रांति पाना है। चित्त की विश्रांति मोक्ष है, चित्त की चंचलता बंधन है, बुद्धि फल अनाग्रह। जिद्दी लोग जो है ना, उनको परिश्रम करना पड़ता है। जक्की और जिद्दी, जितना जक्की स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है, उतना ईश्वर से हम दूर हैं। और जितना सरल स्वभाव है, वाह वाह साईं, वाह गुरु, तेरी मर्जी, तेरा बाणा मीठा लागे, उतना ही हम शांति को उपलब्ध होते हैं। सिंध में जो लोग रहते थे और विदेश में जाकर कमाते थे, उनको सिंधवर्की कहा जाता था। सिंधवर्की खूबचंद के बारे में सुना जाता है कि वो खूबचंद अपनी पत्नी माँ बाप छोड़ के विदेश में कमाने गया। खूब धंधा रोजगार में बरकत रही। 2 साल में एक बार आया, फिर 2 साल में आया, ऐसे करके उसको एक बेटा हो गया, एक का एक बेटा। खूबचंद अपने कमाने के लिए विदेश चला गया और उसके बेटे को निमोनिया हुआ और वो चल बसा, मर गया। पत्नी ने उसको खबर न दी। खबर देने से वो बेटा तो लौटेगा नहीं, पति जहाँ होगा वहाँ बेचैन हो जाएगा। पत्नी ने बेटा मरने की खबर नहीं दी। खूबचंद जब लौट के आया तो पत्नी ने एक गेम खेली, एक खेल खेला, पड़ोसन के गहने ले आई, पहन लिए, खूब सज धज के रही, पति का स्वागत किया मिसिस खूबचंद ने। पति ने पूछा किशोर कहाँ है, बेटा कहाँ है, तो कहीं होगा, खेलता होगा, आप नहाए धोए आराम करे। नहाए धोए भोजन भोजन कराया, पैर पखाल रही है, सेवा कर रही है। बोलते देखिए गहने कितने सुंदर हैं, और पड़ोसन के लाई हूँ और वो मांग रही है, मैं उसे देना नहीं चाहती हूँ। पति बोलता कि पगली, किसी की अमानत है, उसको देने में क्या, ऐसा क्यों करती, तेरा स्वभाव क्यों बगड़ गया। बोले नहीं, वो मांगती तो है रोज रोज, लेकिन मैं देना नहीं चाहती उसको, जा दे, पहले वो काम कर दिया। उसने बोला नहीं नहीं, ये तो गहने मेरे हैं। पति ने कहा खूबचंद के बोलती है पड़ोसन के हैं, मैंने तो बनाए भी नहीं दिए, तेरे कैसे हुए, पड़ोसी की चीज है, तुम्हारी तो नहीं है, उसमें अपनापन क्यों करती है, ऐसे क्या मुंह रखता, जा दे। लंबी चौड़ी बातचीत के बाद वो सचमुच दे आई। बोला कि जैसे वो गहने पर आए थे ना, मैं अपना मान रही थी तो बेवकूफ थी, ऐसे ही वो 5 भूतों का पुतला जो था ना किशोर, वो 5 भूतों का था, वो 5 भूतों में चला गया है, और मेरे को दुख होता है तो मैं बेवकूफ हूं ना। पति बोलता है अच्छा, तूने चिट्ठी नहीं लिखी। बोले चिट्ठी उसलिए नहीं लिखी कि शायद आप वहां दुखी हो, ऐसी बेवकूफी की चिट्ठी क्या लिखना। पति ने कहा ठीक है, बात तो सही है, 5 भूतों के पुतले बनते हैं, बिगड़ते हैं, 5 भूतों में किशोर का आत्मा तो अपना आत्मा एक है, आत्मा की कभी मौत होती नहीं और शरीर कभी शाश्वत टिकते नहीं है, कोई बात नहीं।
वो निर्दयी नहीं है लेकिन समझदार है। तो अनुचित प्रसंग में, मोह के प्रसंग में, अशांति के प्रसंग में यदि तुम कृत उपासक हो, तुम्हारे पास कोई समझ है, तो अशांति के प्रसंग भी तुम्हें अशांति न देंगे। अष्टावक्र कहते हैं, न तुम विप्रो विप्रादि को वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। जैसे तू शरीर का साक्षी है, ऐसे मन का बुद्धि का साक्षी है, सुख और दुख का साक्षी है, ऐसे ही संसार का साक्षी है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो। ये सुख और दुख, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं। सुख के भाव, धर्म के भाव, अधर्म के भाव, ये सब मन में आते हैं। तू मन भी नहीं है तो ये भाव भी तू नहीं है, तू विश्व साक्षी है। अष्टावक्र कहते हैं, न तुम विप्रो विप्रादि को वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। जैसे तू शरीर का साक्षी है, ऐसे मन का बुद्धि का साक्षी है, सुख और दुख का साक्षी है, ऐसे ही संसार का साक्षी है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो। ये सुख और दुख, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं। सुख के भाव, धर्म के भाव, अधर्म के भाव, ये सब मन में आते हैं। तू मन भी नहीं है तो ये भाव भी तू नहीं है, तू विश्व साक्षी है। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तो एवासी सर्वदा। ऐसा नहीं कि तू काल मुक्त होगा, परसों मुक्त होगा। चुंडाला अपने बच्चों को ये उपदेश देती थी, न कर्तासी न भोक्तासी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी। तो जो मूड अपने को बंधन में मानता है वो बंध जाता है, और जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। तो अष्टावक्र बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। बुद्ध तो सात कदम चले, बाद में कहा कि मुक्ति हो सकती है, संसार दुख रूप है, दुख से छूटा जा सकता है। सात कदम चले, बाद में आठवें कदम में कुछ सत्य की बात कही, लेकिन अष्टावक्र तो पहले ही शुरू से ही सत्य कह देते हैं। न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु, ये पांच भूतों का पुतला तो नहीं है, सीधी सादी बात है, एकदम स्वच्छ है। लेकिन हम लोगों की उपासना नहीं, गैर संस्कार पड़ गए, इसलिए कुछ करो, इतना इतना करो, इतना कमाओ, इतना खाओ, इतना धरो, इतना मरो, बाद में कहीं सुखी होंगे। तो सुख का दरिया लहरा रहा है, सुख का सिंधु तुम्हारे साथ है, पास है, और वो सुख स्वरूप परमात्मा तुम्हें दुखी करना भी नहीं चाहता। जैसे बच्चों पर हरकत हुई दुख की तो माँ बेचैन हो गई, ऐसे ही तुम पर यदि दुख की असर होती है तो माँ की माँ जो है परमात्मा, वो अस्तित्व जो ईश्वर आत्मा, वो कोई खुश नहीं होता। ईश्वर तुमको दुखी करके खुश नहीं होता, तुमको सुखी होकर खुश होता है, तुमको शांत देखकर खुश होता है। ईश्वर कहो गुरु कहो, एक ही तत्व के दो नाम है, ईश्वर और गुरु आत्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देहाय तस्मै से गुरुवे नमो। तो हम जब अपने और लौटते हैं, शांत होते हैं, मौन होते हैं, अपने घर की ओर आते हैं, तो भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। और जितना जितना आदमी मौन होता है उतना उतना वो महान होता जाता है, और जितना जितना बहिर्मुख होता है उतनी उतनी उसको गेलछा चढ़ती है। फिर कुछ करके, कुछ देख के, कुछ पाकर, कुछ खोकर आदमी सुखी होता है, वो सुख टिकता नहीं है। अष्टावक्र कहते कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। कोई मजूरी करने की जरूरत नहीं, चित्त की विश्रांति, जहां जहां मन जाता है उसको देखो। जितना अधिक तुम शांत बैठ सको उतना तुम महान होते जाओगे। कीर्तन करते करते देहाध्यास को भूलना है, जप करते करते इधर उधर की बातें को भूलना है। जब इधर उधर की बातें भूल गए तो जप भी भूल जाए तो कोई हरकत नहीं, शांत भावा, सुखी भावा। विष्णु की पूजा में आता है शांताकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। सच पूछो तो विष्णु भगवान को मेघवर्ण क्यों कहा? व्यापक चीज हमेशा मेघवर्णी होती है, गगन सदृश होती है, समुद्र का पानी नीला देखता है, आकाश नीला देखता है। ऐसे जो परमात्मा है, जो विष्णु है, जो सब में बस रहा है, वो व्यापक है, इसलिए इसको नीला वर्ण कह दिया। शिव जी का चित्र, विष्णु का चित्र, कृष्ण का चित्र, राम का चित्र नीलवर्णी बनाया इस देश के जानकारों ने। सच पूछो तो परमात्मा किसी वर्ण का नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की व्यापकता दिखाने के लिए नील वर्ण की कल्पना की गई। तो ऐसे ही तुम्हारा आत्मा किसी वर्ण का नहीं, किसी आश्रम का नहीं, लेकिन जिस शरीर में आता है उस वर्ण का जैसा लगता है, जिस आश्रम में आता है उसको उस आश्रम का मानने लगता है। ऐसा मानते मानते दुखी सुखी होता है और जन्मता मरता है। जब मान्यता बदल जाए तो आदमी इतना अंदर खजाना छुपा है, इतनी इतनी गरिमाशाली आदमी है कि उसको सुखी होने के लिए न स्वर्ग की जरूरत है, न इलेक्ट्रॉनिक के साधनों की जरूरत है, न दारू की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं सुखी होने के लिए। शरीर जिंदा रखने के लिए पानी की, हवा की, रोटी की जरूरत है, लेकिन सुखी होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। और मजे की बात है कि बिना वस्तु के कोई सुखी दिखता ही नहीं। जब सुख आती है कोई वस्तु तो सुखी होता है, वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है, वस्तुओं से तो केवल बेवकूफी बढ़ती जाती है। अभी 4-5 दिन बची थी अंदर, कोई वस्तु नहीं थी, मुंबई के फ्लैट नहीं थे, मकान नहीं थे, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था, 2 टाइम रूखा सूखा भोजन मिल जाता था, बैठ जाते थे शांत। बता दिया था कैसे, ईश्वर की ओर वाला पुस्तक पढ़ता रहना, वो पढ़ती रही ईश्वर का, ईश्वर की ओर वाला पुस्तक योग वशिष्ठ। कह दिया था कि शांत होने के अभ्यास करना। तो यहाँ आई, वो जो शांति सुख मिला तो एकदम इतना भाव में भर गए के पैर दबा रहे थे, फिर शांत शांत होते वो भाव भी शांत हो गया और एकदम पड़ी रही। तो पड़ी रहने में कोई बाहर के लोग नहीं जानेंगे कि कितना सुख मिलता है, लेकिन जब चित्त अंतर्मुख होता है, जो शांति मिलती है और जो एक बार सुख की, परमात्मा के सुख की झलक मिलती है, तो फिर जगत के पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते। एक बार तुमको सम्राट पद मिल जाए, एक बार तुम खीर खा लो, तो भिखारण के टुकड़े तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। एक बार तुम सम्राट बन जाओ, राजाधिराज, तो फिर पटावाला की नौकरी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। ऐसे ही मन को एक बार परमात्मा का सुख मिल जाए, सीधे सीधे मिले, जानकर मिले या अनजाने में ही मिले, एक बार ध्यान का सुख मिल जाए, एक बार परमात्मा का मौन मौन होते होते परमात्मा शांति का सुख मिल जाए, तो फिर मन तुम्हें धोखा नहीं देगा। मन का स्वभाव है जहां उसको झलक मिल जाती है उसी का चिंतन करता है, उसी के पीछे तुमको दौड़ाता है। तो जगत में जो झलके मिलती है वो अज्ञानवश इंद्रियों के द्वारा मिलती है, इसलिए अज्ञानवश बेचारे जीव भागे जाते हैं। जब सत्संग के द्वारा, पुण्य प्राप्ति के द्वारा, गुरुओं की कृपा के द्वारा जब आत्मा की झलक मिलती है, तो जगत की पूरी जो सुख भोगे हैं, जो झलके हैं, वो व्यर्थ हो जाती है। शायद भरतरी ने इसी बात को लक्ष्य करके कहा होगा, जब स्वच्छ सत्संग किनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो के मूड जान्यो आपको, रथ में घूम कर सुख लेना, बिस्तर पर फूलों की शया बनाकर सुख लेना, ये सब मूढ़ता के खेल थे, सुख तो मेरे आत्मा में यूं ही भरा था। तो सुख को सब चाहते हैं और सुख जितना जितना अंतर्मुक्ता से मिलता है उतना उतना आप महान होते जाते हैं, और बहिर्मुक्ता से सुख का एहसास होता है, चिदाभास। एक सरोवर है, उसमें जो लहर उठी उसका नाम चिदावली, चिदाभास, चिदावली। उस चिदावली से बुद्धि वृत्ति हुई, बुद्धि में विकल्प आए तो मन हुआ, उसने चिंतन किया तो चित्त हुआ, देह के साथ अहम किया तो अहंकार हुआ, और वह वृत्ति इंद्रियों के द्वारा जगत में आई, फिर जगत में जात पात आ गई, जात पात आई, आश्रम आए, वर्ण आए, राष्ट्रीयता आई, कालापना आया, गोरापन आया, ये सब वृत्तियों में हमने थोप दिया। परमात्मा रूपी सरोवर में स्पंदन रूपी चिदावली हुई, चिदावली में फिर बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति से फिर संकल्प वृत्ति, विकल्प हुआ, संकल्प विकल्प तो मन वृत्ति, उस वृत्ति ने जब चिंतन किया तो चित्त उसका नाम किया, उस वृत्ति ने जब देह में अहम किया तब अहंकार हुआ। अहंकार 3 किस्म के होते हैं, 2 किस्म के अहंकार मुक्तिदायी है, करना चाहिए, बेड़ा पार होता है, और 1 किस्म का अहंकार जो है वो छोड़ना चाहिए। मैं शरीर हूं, शरीर से संबंध इतना जाति वाला, इतना धर्म वाला, ऐसा हूं, पैसे वाला, ये वो, ये अहंकार नरक में ले जाता है। देह को मैं मानकर, देह के संबंधियों को मेरा मानकर, देह से संबंधित वस्तुओं को हमारा मानकर जो अहंकार है, ये शूद्र अहंकार है, शूद्र चीजों में माया है, ये नरक में ले जाता है। दूसरा है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे वो निभाड़े की बात बताई थी ना, प्रहलाद ने देखा कि वो कुम्हार निभाड़े में आग लगाकर चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है। प्रहलाद ने पूछा क्या कारण है, क्यों रोते हो, क्यों प्रार्थनाएं करते हो। कुम्हार ने कहा कि बिल्ली के बच्चे दो निभाड़े के बीच जो मटका था ऊंधा, उसमें रखे गए थे, बिल्ली ने रखे थे, मैं निकालना भूल गया और चारों तरफ आग लगा दी। अब मेरे बस में नहीं है कि उनको बचाऊं, आग बुझाना मेरे बस की बात नहीं, आग चारों तरफ लपटे ले रही है, मेरे बस में नहीं उन बच्चों को जिला दूं, लेकिन अस्तित्व चाहे, परमात्मा चाहे तो उन्हें जिंदा रख सकता है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं, पश्चाताप भी करे जा रहा हूं और उसको प्रार्थना भी किए जा रहा हूं कि मेरी बेवकूफी को तू नहीं देखना, तू अपनी उदारता को देखना, मेरी नादानी को मत निहारना, तू अपनी करुणा को निहारना, उन बच्चों को तू बचाना, तू चाहे तो बचा सकता है। उभर गया प्रार्थना से, अनजाने में देहाध्यास से खो गया, मटके पक गए, जिस मटके में बच्चे पड़े थे वो भी पक गया, लेकिन बच्चे कच्चे के कच्चे रहे, जिंदे के जिंदे रहे। मुकम करोति वाचालम, वो ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो तो सतत करता है। नहीं तो कलयुग का आदमी, घोर कलयुग का आदमी और अहमदाबाद में रहने वाला, हमारा क्या पुण्य है, हमारी क्या अकल है, हमारी क्या समझ है, फिर भी वो प्रेरणा करके ऐसी जगह पर लिए जा रहा है। अस्तित्व चाहता है, परमात्मा चाहता है कि आप सदा के लिए सुखी हो जाओ, इसीलिए तो तुमको यहां लाने की प्रेरणा देता है। तुम्हारी अकल और होशियारी से तो हम लोग कर करके थके हैं, उसकी बार बार करुणा हुई, हमने बार बार ठुकराई, फिर भी वो थकता नहीं है, हमारे पीछे लगा रहता है जगाने के लिए, कई आयाम करता है, कई तकलीफें देता है, कई सुख देता है, कई प्रलोभन देता है, संतों के द्वारा दिलाता है। बोले आशाराम बापू ने आशीर्वाद दिया, ये दिया, मैं क्या देता हूँ, मेरे पास ये होता तो फिर मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ आशीर्वाद वाशीर्वाद देता नहीं। परमात्मा तुमको अपने तरफ बुलाने के लिए आशाराम के द्वारा कुछ कह देता और हो जाता होगा। परमात्मा तुमको अपना बनाने के लिए आशाराम के द्वारा कुछ घटा देता होगा, बोला देता होगा, हो जाता होगा। तो ये अस्तित्व ही तो करता है, परमात्मा ही तो करता है, परमात्मा की सत्ता से तो हो रहा है। तो जब वो करुणाशाली ईश्वर इतना इतना कर रहा है, इतना इतना तुम्हारा ख्याल रख रहा है, बिल्ली के बच्चों को निभाड़े से बचाया, अब बिल्ली के बच्चों को निभाड़े से बचा सकता है तो अपने बच्चों को संसार भट्ठी से बचा ले और अपने आप में मिला दे तो उसके लिए कोई कठिन भी तो नहीं है ना। परमात्मा तो सचमुच इधर उधर कहीं है नहीं। तुम्हारा अहंकार होता है तो परमात्मा छुप जाता है, तुम्हारा अहंकार खो जाता है तो परमात्मा हो जाता है। एक बूढ़े फकीर से गृहस्थी ने पूछा कि बाबा जी तुमको भिक्षा तो हम देंगे लेकिन तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है। बाबा जी ने कहा देख ले, बाबा जी ने मुंह फाला तो दांत नहीं, जीभ घुमा के देखा है, बोले यही अनुभव है मेरे जीवन का। बाबा समझे नहीं, बोले देख दांत कड़े हैं गायब हो गए और जीभ नरम है तो अभी तक है, जो कड़ा है वो जाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो अकड़ है, जिसमें कड़ापन है, अकड़ है, वो जल्दी मर खो जाता है, मर जाता है। अकड़ वाले सब गाय है, और जिसमें अकड़ नहीं है वो अंतिम तक रहती। तो देह को मेरा मानकर जो अकड़ा है और देह के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कुछ जगत का कचरा भरा है, उस विद्या को मेरी विद्या मानकर जो अकड़ा है वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन जिसको इन चीजों की अकड़ नहीं है, जो अस्तित्व पर बिखरा है, वो जैसे जीवा मुंह में कायम रहती है, दांत टूटते फूटते रहते हैं, ऐसे ही उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी ईश्वर प्रीति कायम रहती है। तीसरा अहंकार होता है गुणातीत, न ये बेटा है, न मकान है, न घर है, न दुकान है, न मैं हूं, न मेरा है, न जीव है, न ईश्वर है, केवल सब संकल्पों का खेल है।
बस जो है सो वो एक ही सच्चिदानंद असंग मैं आत्मा हूँ, मेरे ही अनेक रूप हो रहे हैं, मैं ब्रह्म हूँ, सूरज में ओज मेरा है, चंदा में चांदनी मेरी है, ऋषियों में ऋषित्व मेरा है, साधुओं में साधुता मेरी है, जोगी मेरा ही जोग करते हैं, तपस्वी मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, ज्ञानी मेरे को ही साधते हैं, और भोगी मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। ये अहंकार करने से बेड़ा पार हो जाता है। अहंकार करना है तो ऐसा करो, मैं चैतन्य हूं, मैं परमात्मा का हूं, गुरु का हूं, या तो मैं ब्रह्म हूं। तीन प्रकार के अहंकार, एक छोड़ दो, दो तुम्हारे हैं।